अध्याय चार, कर्मचारी चयन, पर्सनल सिलेक्शन। कर्मचारी चयन का मुख्य आधार व्यक्तित्व विभिन्नता है, क्योंकि व्यक्ति की विशेषताएं जैसे बुद्धि, अभिरुचि, व्यक्तित्व इत्यादि एक दूसरे से भिन्न होती है। अतः कोई भी कार्य प्रत्येक व्यक्ति अच्छी तरह से नहीं कर सकता। किसी भी कार्य में वही व्यक्ति सफल होता है जिसमें उस कार्य में सफल होने के लिए आवश्यक गुण विद्यमान रहते हैं। इस तरह अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग गुणों की आवश्यकता होती है। अतः व्यक्ति की विशेषताओं तथा कार्य की आवश्यकताओं में समुचित सामंजस्य होने पर भी कार्य अच्छी तरह हो सकता है। अतः इस अध्याय को दो भागों में बांटा गया है, पहला व्यक्तित्व विभिन्नता, दूसरा कर्मचारी चयन। व्यक्तित्व विभिन्नता। गॉल्टन ने व्यक्तित्व विभिन्नता के संबंध में बतलाया है कि प्रत्येक व्यक्ति ऊंचाई, वजन, वृद्धि, सामाजिकता, प्रतिक्रिया, काल, संवेदनशीलता इत्यादि क्षेत्रों में एक दूसरे से अलग होते हैं। मनोविज्ञान में परीक्षणों के माध्यम से व्यक्तित्व विभिन्नताओं का मापन किया जाता है। थाई नाई डाइक ने व्यक्तित्व विभिन्नता के संबंध में दो सिद्धांत बतलाए हैं। पहला, यदि कोई वस्तु अस्तित्व में है तो इसका अस्तित्व कुछ मात्रा में होता है। दूसरा, यदि वह कुछ मात्रा में है तो इसका मापन किया जा सकता है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित है। यह इस बात की ओर इंगित करता है कि मनोवैज्ञानिक विशेषताओं के कुछ निश्चित आयाम होते हैं जिनका वैज्ञानिक अध्ययन किया जा सकता है। प्रत्येक कार्य को करने के लिए विभिन्न मात्रा में बुद्धि, कौशल, अभिरुचि और मनोवैज्ञानिक विशेषताओं की आवश्यकता होती है। जब कोई व्यक्ति किसी व्यवसाय में चयन के लिए जाता है, उस समय यह आवश्यक हो जाता है कि उसकी सारी विशेषताओं की परख की जाए और यह देखा जाए कि उस व्यक्ति में उस कार्य में सफल होने के लिए कितनी योग्यताएं मौजूद हैं। विभिन्न विशेषताओं विभिन्न मात्रा में अलग अलग कार्यों के लिए आवश्यक होती हैं। किसी विशेषता का बहुत अधिक मात्रा में होना या न होना इस बात की ओर संकेत करता है कि वह व्यक्ति उस कार्य के लिए योग्य है या नहीं। अतः इस बात की जानकारी प्राप्त करनी आवश्यक है कि व्यक्ति में वे विशेषताएं समुचित मात्रा में उपस्थित हैं जो उस कार्य में सफल होने के लिए चाहिए। किसी भी औद्योगिक परिस्थिति में हम यह नहीं पाते कि कर्मचारियों के कार्य उत्पादन में बहुत अधिक अंतर है। इसके बहुत से कारण हैं। सबसे प्रमुख कारण यह है कि किसी भी उद्योग में अयोग कर्मचारी बहुत दिनों तक नौकरी नहीं कर सकता। उसके समक्ष दो विकल्प रहते हैं। पहला, उसे अपने उत्पादन में वृद्धि करनी पड़ेगी जिससे कि उसके उत्पादन और उसके साथियों के उत्पादन में अंतर न रह सके। दूसरा विकल्प यह बचता है कि यदि कर्मचारी अपने उत्पादन में वृद्धि करने में असफल हो जाता है तो वह नौकरी से अलग कर दिया जाए। इसके अलावा और भी कारण हैं जिसकी वजह से कार्यकुशलता के अनुपात में अधिक अंतर नहीं हो सकता। प्रत्येक उद्योग समूह में कार्य उत्पादन की कम से कम एक निम्नतम सीमा होती है जिसके नीचे जाने पर या तो कर्मचारियों का स्थानांतरण किसी नई जगह पर कर दिया जाता है या फिर उसे विशेष प्रशिक्षण देकर कार्य उत्पादन में सुधार लाने का प्रयास किया जाता है। ज़्यादातर उद्योगों में कार्य उत्पादन में सुधार आर्थिक विचारों से निर्देशित होता है और अयोग्य कर्मचारियों को आर्थिक दंड दिया जाता है। पहले योग्य कर्मचारियों की तुलना में उनकी आमदनी कम होती है और दूसरे अपने साथी कर्मचारियों में उन्हें नीची दृष्टि से देखा जाता है। इस तरह आर्थिक और सामाजिक कारणों से अयोग्य कर्मचारियों को अपने मन में बहुत ही दयनीय स्थिति को पाता है। ऐसे देशों में जहाँ पर व्यक्ति की संख्या अधिक है वहाँ के उद्योगपति अच्छे श्रमिकों का चुनाव कर सकते हैं। वहाँ पर कर्मचारी बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। इसी के साथ साथ उनके मन में यह भी भय रहता है कि यदि अच्छा काम नहीं होगा तो दूसरे सक्षम कर्मचारियों में से चुनाव करने के उन्हें कार्य से हटाया जा सकता है। इसलिए सभी कर्मचारी अच्छी तरह से काम करने का प्रयास करते हैं और अपना समायोजन कार्य क्षेत्र में, प्रबंध के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में तथा व्यक्तित्व क्षेत्र में बनाए रखते हैं। प्रबंधक कुशल कर्मचारी के कार्यस्तर को मानक रूप में प्रयोग करते हैं। कर्मचारियों के वेतन निर्धारण में भी इसी विधि का उपयोग किया जाता है। हूल ने विभिन्न प्रकार के कार्यों में कम कुशल और अधिक कुशल कर्मचारियों के बीच का अनुपात का निर्धारण किया है, जो निम्नलिखित टेबल में दिखलाया गया है। व्यक्तित्व विभिन्नता के कारण। व्यक्तित्व विभिन्नता के दो प्रमुख कारण हैं। पहला वंशानुक्रम, दूसरा वातावरण। प्रत्येक व्यक्ति का विकास वंशानुक्रम और वातावरण के अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। इसमें यह कहना बहुत कठिन है कि व्यक्ति के विकास में वंशानुक्रम का कितना योगदान है और वातावरण का कितना योगदान है, लेकिन यह निश्चित है कि दोनों मिलकर ही हमारे विकास को प्रभावित करते हैं। वैसे विकासात्मक मनोविज्ञान में यह मतभेद होने तक था, व्यक्ति के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण का कितना कितना योगदान रहता है, लेकिन अब यह निश्चित हो चुका है कि व्यक्ति के विकास की संरचनात्मक सीमा वंशानुक्रम द्वारा निर्धारित होती है। यह सीमा व्यक्ति के सर्वाधिक विकास की संभावना का निर्धारण करती है। इस सीमा का निर्धारण वंशानुक्रम द्वारा होता है। दूसरी तरफ विकास की क्रियात्मक सीमा का निर्धारण वातावरण द्वारा होता है। इसमें व्यक्ति के विकास की वास्तविक सीमा होती है। इस तरह वंशानुक्रम द्वारा व्यक्ति के विकास की संभावना का निर्धारण होता है और वातावरण द्वारा व्यक्ति की वास्तविक विकास की सीमा निर्धारित होती है। वंशानुक्रम द्वारा व्यक्ति का कितना विकास हो सकता है, यह सीमा निर्धारित होती है और वातावरण से उस संभावित विकास की क्षमता में कितना विकास हुआ है का निर्माण होता है। इस तरह वंशानुक्रम और वातावरण के संबंध में निम्नलिखित सारांश निकाल सकते हैं। पहला, अनुभव शिक्षा प्रशिक्षण द्वारा उत्पादन में सुधार संभव है। दूसरा, एक सी सीमा के बाद अभ्यास और प्रशिक्षण द्वारा उत्पादन में विकास संभव है। तीसरा, संरचनात्मक सीमा के बाद प्रशिक्षण द्वारा वृद्धि संभव नहीं है। चौथा, वंशानुक्रम विकास की संभावना निर्धारित करता है और वातावरण वास्तविक विकास से संबंधित है। कर्मचारियों का मूल्यांकन। कोई भी कर्मचारी अपना कार्य किस प्रकार कर रहा है, इसकी जानकारी उसकी आमदनी से लगाया जा सकता है। यदि आमदनी अधिक है तो इससे यह ज्ञात होता है कि वह अपना कार्य अच्छी तरह से सफलतापूर्वक कर रहा है, लेकिन मापदंड बहुत विश्वसनीय नहीं होता। इसके अलावा पदोन्नति, स्थानांतरण और पदमुक्ति द्वारा भी व्यक्ति के कार्यों के संबंध में जानकारी मिलती है। जब किसी व्यक्ति की पदोन्नति की जाती है, उस समय यह आवश्यक है कि इस बात को सुनिश्चित कर लिया जाए कि उस नए कार्य के लिए वह व्यक्ति सबसे अधिक उपयुक्त है। इस तरह स्थानांतरण के समय में भी यह देखा जाता है कि जिस नए कार्य पर उस कर्मचारी को भेजा जा रहा है, वह उस कार्य को अच्छी तरह कर पाएगा अथवा नहीं। इस तरह अकुशल कर्मचारियों की भी पदमुक्ति कर दी जाती है, जिनसे इस बात की संभावना नहीं रहती कि प्रशिक्षण अथवा अनुभव के बाद भी वे कुशल कर्मचारी बन सकेंगे। इस तरह कर्मचारियों के मूल्यांकन की प्रक्रिया बराबर चलती रहती है। कर्मचारियों के मूल्यांकन में त्रुटियों के स्रोत। कभी कभी ऐसा होता है कि कर्मचारियों के मूल्यांकन में त्रुटि हो जाती है, जिससे या तो अकुशल कर्मचारियों का कुशल मान लिया जाता है अथवा कुशल कर्मचारियों को अकुशल की श्रेणी में रख देते हैं। दोनों प्रकार की त्रुटियां हानिकारक सिद्ध होती हैं। यदि कुशल कर्मचारियों को अकुशल मानकर पदमुक्त कर दिया जाए अथवा पदोन्नति न दी जाए तो इससे मानव संसाधन की हानि होगी, अथवा अकुशल कर्मचारियों को यदि कुशल समझकर काम करने दिया जाए तो उत्पादन में कमी आएगी, दुर्घटना की संभावना अधिक रहेगी, अनुपस्थिति बढ़ेगी इत्यादि। इसलिए कर्मचारियों का मूल्यांकन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। कर्मचारियों के मूल्यांकन में तीन प्रकार के दोष हो सकते हैं। पहला, उदारता की त्रुटि। कभी कभी यह देखा गया है कि मूल्यांकनकर्ता आवश्यकता से अधिक उदार होकर मूल्यांकन करते हैं और इसी कारण वे ऐसे कर्मचारियों का उस श्रेणी प्रदान कर देते हैं जो वास्तव में उसके योग्य नहीं। दूसरा, केंद्रीय प्रवृत्ति की त्रुटि। कभी कभी कुछ मूल्यांकनकर्ता कर्मचारियों का मूल्यांकन करते समय उन्हें मध्य श्रेणी में ही रख देते हैं। ऐसे मूल्यांकनकर्ता किसी को निम्न अथवा बहुत उच्च श्रेणी में नहीं रखते। तीसरा, प्रभान मंडल प्रभाव। कभी कभी यह मान लिया जाता है कि जब कोई कर्मचारी एक क्षेत्र में अच्छा है तो उसे दूसरे में भी अच्छे गुण होंगे, जबकि ऐसा नहीं होता। उसी तरह यदि किसी में एक दुर्गुण हो तो उसमें बहुत से दुर्गुण होंगे, यह मान लिया जाता है। यह भी मूल्यांकन का एक दोष है। इस प्रकार के दोष अधिकतर दिखाई पड़ते हैं। अतः मनोवैज्ञानिकों ने मूल्यांकनकर्ता के प्रशिक्षण पर बल दिया है, जिससे वे वस्तुगत मूल्यांकन कर सकें। कर्मचारी चयन। उद्योग के क्षेत्र में व्यक्तियों के क्षमताओं के मूल्यांकन की आवश्यकता का बड़ा महत्व है। व्यक्तियों के कार्यों में सफलता, संतुष्टि, प्रसन्नता और उसकी उन्नति का सीधा संबंध इस बात पर निर्भर करता है कि कार्य की आवश्यकताओं और व्यक्ति की योग्यताओं में कहाँ तक समानता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ठीक ढंग से चुनाव की प्रक्रिया किसी भी व्यवसाय में आवश्यक है। किसी भी कार्य में विभिन्न कर्मचारियों के उत्पादन में अंतर पाया जाता है और प्रत्येक कार्य में सफल होने के लिए कुछ गुणों की आवश्यकता पड़ती है। हर व्यक्ति प्रत्येक कार्य में सफल नहीं होता, अतः किसी भी कार्य में उचित व्यक्ति का ही चुनाव होना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों का चुनाव नहीं होना चाहिए जिनमें वे गुण उपस्थित ना हों जो उस कार्य में सफल होने के लिए आवश्यक है, और यदि ऐसा ना हुआ तो व्यक्ति उस कार्य के लिए चुना जाएगा और उसका समायोजन बिगड़ जाएगा। किसी भी संगठन में कार्य की आवश्यकता और कर्मचारियों की योग्यता में इतना समन्वय होता है कि उस संगठन के पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हो रही होती है। यह मध्य लक्ष्य अधिक उत्पादन, कार्यदृष्टि इत्यादि को हो सकते हैं। करीब 50 वर्ष पूर्व उद्योगपतियों और मनोवैज्ञानिकों ने इस बात के महत्व को महसूस किया कि किसी भी कार्य के लिए योग्य शक्ति का ही चुनाव होना चाहिए। इसलिए चुनाव करने के पहले उस व्यक्ति के संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त करनी आवश्यक होती है। निम्नलिखित बातों के कारण उचित चुनाव आवश्यक होता है। पहला, यदि व्यक्ति उचित चुनाव ना हुआ तो समायोजन ठीक ना रहेगा। व्यक्तित्व गुण और उसकी योग्यताएं कार्य आवश्यकता के अनुरूप होनी चाहिए। दूसरा, जब व्यक्ति अनुपयुक्त कार्य का चुनाव करता है तो कार्य परिवर्तन की संभावना में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि अनुपयुक्त कार्य होने के कारण तरह तरह की समस्याओं के उत्पन्न होने की संभावना होती है। तीसरा, यदि कर्मचारी ठीक ढंग से काम नहीं करेगा तो उत्पादन की मात्रा में कमी होगी। चौथा, असमायोजित कर्मचारी से दुर्घटना होने की अधिक संभावना होती है। उपयुक्त बातों को ध्यान में रखकर किसी भी कार्य में उचित व्यक्ति का ही चुनाव होना चाहिए। चुनाव वैज्ञानिक होना चाहिए, क्योंकि इसमें व्यक्ति के संभावित सफलता की एक अर्थ में भविष्यवाणी की जाती है। यद्यपि अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग योग्यताओं, शील गुणों और शारीरिक विशेषताओं की आवश्यकता पड़ती है, फिर भी सभी तरह के व्यवसायों में निम्नलिखित बातों की जानकारी आवश्यक है। पहला, व्यक्ति की पृष्ठभूमि, पारिवारिक एवं आर्थिक परिस्थिति। दूसरा, उसकी धार्मिक एवं जातीय पृष्ठभूमि। तीसरा, क्षेत्रीय पृष्ठभूमि। कौशल अथवा निपुणता, सामर्थ्य, स्वभाव एवं व्यक्ति की विशेषताएं, कार्य में रुचि। उपयुक्त चुनाव के कारण न केवल उत्पादन में वृद्धि होती है, बल्कि इसकी वजह से दूसरे सुधार जैसे दुर्घटनाओं में कमी, मनोबल में वृद्धि इत्यादि भी हो सकता है। स्ट्रॉमबर्ग ने कुछ परिस्थितियों में यह देखा गया कि केवल चुनाव प्रक्रिया को वैज्ञानिक बना देने से ही आवेदकों के प्रकार में सुधार होता है। व्यवस्थित चुनाव प्रक्रिया से न केवल तुरंत लाभ होते हैं, बल्कि कुछ परिणाम दूरगामी भी होते हैं। चुनाव प्रक्रिया जितनी वैज्ञानिक होगी, मानव संसाधनों का उपयोग उतना ही अधिक होगा। व्यावसायिक चयन के वैज्ञानिक विधि से दो बातें सम्मिलित हैं। पहला, व्यक्तित्व विभिन्नताओं का मापन। दूसरा, व्यावसायिक सफलता अथवा असफलता का पूर्वानुमान। जिन वैज्ञानिक विधियों का उपयोग चुनाव में किया जाता है और उस विधि के माध्यम से कर्मचारियों के भविष्य की सफलता का जितना अधिक पूर्वानुमान सत्य होगा, वह विधि उतनी ही वैज्ञानिक कही जाएगी। इस तरह चुनाव की विधि का चयन करते समय इस बात का पता लगाना बेहद आवश्यक है कि उस विधि से किस मात्रा में कार्य की सफलता का पूर्वानुमान संभव है। पदोन्नति के समय भी यदि ध्यान से देखा जाए तो योग्य व्यक्ति का ही चुनाव होता है, जिनमें उच्च पद से संबंधित जिम्मेदारियों को पूरा करने की योग्यता हो। चुनाव की विधियां ऊपर यह बात स्पष्ट की जा चुकी है कि प्रत्येक कार्य को करने के लिए अलग अलग योग्यताओं की आवश्यकता पड़ती है और हर व्यक्ति में सभी गुण नहीं होते, इसलिए चुनाव की आवश्यकता पड़ती है। व्यक्ति के संबंध में सूचनाएं विभिन्न तरीकों से प्राप्त की जा सकती हैं, इसे ही चयन की विधियां कहते हैं। किसी भी संगठन में आजकल मुख्य रूप से आवेदन पत्र, साक्षात्कार और परीक्षण का उपयोग किया जाता है। पहला, आवेदन पत्र। शायद ही कोई ऐसा चुनाव होता है जिसमें आवेदन पत्र का उपयोग नहीं होता है। स्कॉट कोलोदियर और स्प्री जेल ने एक सर्वेक्षण के आधार पर यह बताया कि 99.5% कंपनियों ने आवेदन पत्र का उपयोग किया था। यद्यपि आवेदन पत्र में पूछे गए प्रश्नों की संख्या में अंतर हो सकता है, आवेदन पत्र में जिन बातों की जानकारी प्राप्त की जाती है उनमें नाम, उम्र, पता, शिक्षा, अनुभव इत्यादि रहते हैं। आवेदन पत्र के मुख्य रूप से दो कार्य होते हैं। पहला, वे कर्मचारी के संबंध में ऐसी सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं जिनकी आवश्यकता चुनाव के बाद होती है। उदाहरण के लिए उम्र, लिंग, आश्रितों की संख्या इत्यादि। आवेदन पत्रों के माध्यम से उन सूचनाओं को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है जो चुनाव प्रक्रिया में निर्णयात्मक भूमिका निभाते हैं। एक तरह से देखा जाए तो आवेदन पत्र भी संरचनात्मक साक्षात्कार ही है, जिसमें प्रश्नों का निर्धारण एवं मानवीकरण पहले से ही किया जाया रहता है। ज़्यादातर आवेदन पत्रों के माध्यम से इस तरह की सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं, जिन्हें व्यक्तित्व इतिहास कहा जा सकता है। इनमें पहले किए गए कार्य का विवरण एवं जीवन का इतिहास रहता है। आवेदन पत्रों के साथ मुख्य समस्या यह होती है कि इसके निर्माण के समय लोग विशेष ध्यान नहीं देते और एक या दो लोग मिलकर उन प्रश्नों का चुनाव कर देते हैं जिन्हें आवेदन पत्र में रखना रहता है। कभी कभी दूसरे संगठनों द्वारा बनाया गया आवेदन पत्र ही स्वीकार कर लिया जाता है। इस तरह कभी कभी आवेदन पत्र बहुत ही उपयुक्त नहीं हो पाता। आवेदन पत्र में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या होती है। वैसे कोशिश यह की जानी चाहिए कि आवेदन पत्रों में उन्हीं प्रश्नों को रखा जाए जिनके द्वारा प्राप्त सूचनाएं चयन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण हो। ऐसे प्रश्नों द्वारा प्राप्त उत्तर इस बात की सूचना देते हैं कि यदि उसके आधार पर किसी व्यक्ति को चुना गया तो भविष्य में वह कितना सफल कर्मचारी हो सकता है। इस तरह प्रश्नों की जांच करके हम केवल वही पद आवेदन पत्र में रखेंगे जो कर्मचारियों के भविष्य में सफलता के स्तर की पूर्व सूचना दे। इस तरह आवेदन पत्र के कुछ पद अधिक महत्वपूर्ण होते हैं और चुनाव प्रक्रिया में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस तरह के आवेदन पत्रों को भारित आवेदन पत्र कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी कार्य में कम उम्र का लाभदायक होना होता है तो चयन के समय ऐसे लोगों को प्राथमिकता दी जाती है। साक्षात्कार। चुनाव की सबसे अच्छी विधियों में साक्षात्कार एक विधि है। ज़्यादातर परिस्थितियों में साक्षात्कार और आवेदन पत्र ही चुनाव के मुख्य आधार होते हैं। उद्योगों में साक्षात्कार विभिन्न उद्देश्यों को लेकर किए जाते हैं। पहला, साक्षात्कार का सर्वाधिक उपयोग व्यक्तियों के चयन, पदोन्नति या स्थानांतरण में किया जाता है। इस तरह के साक्षात्कारों को चयन या स्थापन साक्षात्कार कहते हैं। दूसरा, साक्षात्कार में जब व्यक्तियों के कार्य और कंपनी के प्रति उनकी अभिवृत्तियों की जानकारी प्राप्त की जाती है तो इस प्रकार के साक्षात्कारों को अभिवृत्ति साक्षात्कार कहते हैं। इस तरह ज़्यादातर साक्षात्कार या तो कार्य करने वाले कर्मचारियों में किए जाते हैं या ऐसे कर्मचारियों से साक्षात्कार किया जाता है जो सेवानिवृत्त के करीब होते हैं। तीसरा, कार्यरत कर्मचारी जब किसी व्यक्ति अथवा कार्य से संबंधित समस्याओं का सामना करते हैं तो जिसका कार्य उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ता है, उस समय ऐसे व्यक्तियों का साक्षात्कार करके उनकी समस्याओं का निदान किया जाता है। इस प्रकार के साक्षात्कार को परामर्श साक्षात्कार कहते हैं। चौथा, कभी कभी इस बात की जांच की जाती है कि कोई व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में किस प्रकार कार्य करता है। यह मूल्यांकन प्रतिबल साक्षात्कार द्वारा किया जा सकता है। इसमें साक्षात्कारकर्ता जानबूझकर तनाव की परिस्थिति पैदा करते हैं और यह देखते हैं कि व्यक्ति उस परिस्थिति में किस प्रकार काम कर रहा है। इन लोगों का यहाँ पर मुख्य उद्देश्य चयन साक्षात्कार के संबंध में जानकारी प्राप्त करना है, अतः आगे इसके संबंध में प्रकाश डाला गया है। चयन साक्षात्कार। यद्यपि कि आजकल चयन प्रक्रिया में परीक्षणों का प्रयोग बहुत अधिक बढ़ गया है, फिर भी यह दूसरे स्थान पर ही है। पहले स्थान पर चयन साक्षात्कार ही है। साक्षात्कार में चयनकर्ता और आवेदक आमने सामने बैठकर वार्तालाप करते हैं। साक्षात्कार आवेदक से प्रश्न पूछता है जिसके आधार पर चुनाव का निर्णय किया जाता है। कभी कभी साक्षात्कार व्यक्तिगत होता है और कभी कभी समूह में होता है। विभिन्न सर्वेक्षणों से यह स्पष्ट हो चुका है कि साक्षात्कार विधि का उपयोग करीब करीब हर प्रकार के चयनों में किया जाता है। स्प्रीजेल और जेम्स ने दो अलग अलग सर्वेक्षणों में सन 1930 और 1957 में किए गए थे पाया कि पहले वाले सर्वेक्षण में 93% और बाद के सर्वेक्षण में 99% चुनाव में साक्षात्कार का प्रयोग हुआ। साक्षात्कार का कोई निश्चित समय निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन चुनाव के उद्देश्य पर निर्भर करता है। इसी के साथ साथ किसी पद के लिए चुनाव हो रहा है, कितने आवेदक हैं, साक्षात्कार का चुनाव प्रक्रिया में कितना महत्व है और साक्षात्कारकर्ता के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है कि साक्षात्कार की अवधि कितनी होगी। साक्षात्कार की मुख्य रूप से दो उद्देश्य होता है। पहला, ऐसी सूचनाएं एकत्र करना जो चुनाव के निर्णय में उपयोगी हों। दूसरी, ऐसी सूचनाओं का मूल्यांकन करना तथा आवेदक को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का निर्णय करना। साक्षात्कार के समय सूचना एकत्र करना साक्षात्कारकर्ता के प्रकार, उनके प्रेक्षण की मात्रा तथा किस पद के लिए साक्षात्कार हो रहा है पर निर्भर करता है। इस तरह सूचना एकत्र करने की दो विधियां हैं। पहले को संरचनात्मक साक्षात्कार कहते हैं। इसमें प्रश्नों का निर्धारण पहले ही कर लिया जाता है और वही प्रश्न सभी आवेदकों से पूछे जाते हैं। दूसरे को असंरचनात्मक कहते हैं, जिसमें इस तरह की कोशिश की जाती है कि सभी आवेदकों की विशेषताओं को अच्छी तरह से समझा जा सके। बेलोज और एस्टेप ने अपनी पुस्तक को इस बात को अच्छी तरह से बतलाया है कि साक्षात्कार के समय प्राप्त होने वाली सूचनाएं किन श्रेणियों में रख सकते हैं। उन्होंने सूचनाओं के स्रोत के आधार पर उनका वर्गीकरण किया। पहले वर्ग में वे सूचनाएं जो साक्षात्कार परिस्थिति में बंधी हुई नहीं होती हैं, इसमें अनुशंसा पत्र, आवेदन पत्र और मनोवैज्ञानिक परीक्षण इत्यादि हैं। ये सूचनाएं साक्षात्कार के समय अथवा उसके पहले भी साक्षात्कारकर्ता को दी जानी चाहिए, जिससे वह साक्षात्कार में समय उनका उपयोग कर सके। दूसरे वर्ग में वे सूचनाएं आती हैं जिन्हें साक्षात्कार के समय आवेदक से प्राप्त किया जाता है। वैसे आवेदक की वेशभूषा, व्यवहार के तौर तरीके और सामाजिक परिस्थितियों को अपने उपस्थित करने का तरीका इत्यादि, चूँकि साक्षात्कार आमने सामने होता है, अतः साक्षात्कारकर्ता को आवेदक के भाषा और बोलचाल इत्यादि से बहुत सी उपयोगी सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं। इससे साक्षात्कारकर्ता का साक्षात्कार करने का कौशल बड़ा महत्वपूर्ण होता है। उसका व्यवहार आवेदकों के व्यवहार को प्रभावित करता है। इस बात से भी सभी सहमत हैं कि सफल चयन साक्षात्कार तभी माना जाएगा जब उनमें चुने हुए लोग वास्तविककालीन परिस्थिति में ही सफल हो। असफल साक्षात्कार के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखकर आवश्यक है। पहला, साक्षात्कारकर्ता का चुनाव बहुत सावधानी से करना चाहिए। दूसरा, साक्षात्कारकर्ता को साक्षात्कार करने के लिए प्रशिक्षण देना भी आवश्यक है। तीसरा, साक्षात्कार के समय पूछे जाने वाले प्रश्नों को अच्छी प्रकार व्यक्त करना चाहिए, जिसे वे सही अर्थों में लिए जाएं। चौथा, साक्षात्कार की विश्वसनीयता और वैधता में वृद्धि करने के लिए उन्हें आवेदकों का कई बार विभिन्न साक्षात्कारकर्ताओं द्वारा साक्षात्कार लेकर ही उनके चुनाव का निर्णय करना चाहिए। पांचवा, साक्षात्कार विधि का मानकीकरण करने की आवश्यकता है। साक्षात्कार में पूर्वनिर्धारित प्रश्नों का उपयोग करना चाहिए। तीसरा, परीक्षण। उद्योग समूह में ऐसा माना गया है कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण केवल प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिकों का ही कार्य है, जबकि कार्य के ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जैसे प्रलोभन, विकास, प्रशिक्षण, दुर्घटनाओं पर नियंत्रण, विपणन, शोध और विज्ञापन की प्रभावशीलता, जिसमें दूसरे क्षेत्रों के लोग भी अध्ययन करते हैं। परीक्षण का कार्य मनोवैज्ञानिकों के जिम्मे ही है। कुछ प्रश्नों के समूह को मनोवैज्ञानिक परीक्षण नहीं करते। एक परीक्षण को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि मनोव्यवहार का मानकीकृत प्रतिदर्श है। परीक्षण के लिए कुछ बातें आवश्यक हैं। पहला, जिस व्यवहार का मापन करना चाहते हैं उससे संबंधित सभी प्रकार के प्रश्न होने चाहिए। दूसरा, उन परीक्षणों के बार बार इस्तेमाल करने पर परिणाम लगभग एक जैसा प्राप्त होने चाहिए। इस तरह सभी मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की वैधता, विश्वसनीयता और मानक की जानकारी होनी चाहिए। किसी परीक्षण की वैधता से हमारा तात्पर्य यह है कि जिस क्षेत्र के मापन के लिए परीक्षण विकसित किया गया है उसमें सम्मिलित किए गए प्रश्न उन्हीं क्षेत्रों में संबंधित होने चाहिए। विश्वसनीयता का तात्पर्य यह है कि कोई परीक्षण किसी व्यक्ति अथवा समूह पर दो अलग अलग संयमों पर प्रशासित किया जाए तो दोनों के परिणाम एक जैसे आने चाहिए। इसे ही परीक्षण का विश्वसनीयता कहते हैं। परीक्षणों द्वारा प्राप्त परिणामों की व्याख्या करने में मानकों का प्रयोग किया जाता है। इनकी मदद से यह निर्णय कर पाते हैं कि कोई भी व्यक्ति किस श्रेणी में आएगा। मानकों का विकास करते समय परीक्षणों को बहुत बड़े समूह पर प्रशासित करके यह देखा जाता है कि कितने प्रतिशत लोग कितने अंक प्राप्त करते हैं, और इसी के आधार पर मानकों का भी विकास किया जाता है। उद्योग में परीक्षण के लाभ। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का जब उद्योग में प्रयोग किया जाता है तो उसका प्रमुख लाभ यह है कि यह वस्तुगत और मानकीकृत होता है। दूसरी, चुनाव विधियां जैसे साक्षात्कार, अनुशंसा पत्र की तुलना में परीक्षण के माध्यम से व्यक्ति के संबंध में पता लगाना आसान है। इसमें प्रयोगकर्ता के पक्षपात की संभावना दूसरी विधियों की तुलना में बहुत कम रहती है। इस प्रकार के साथ साथ कम समय में परीक्षणों के माध्यम से अधिक लोगों के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। परीक्षणों का वर्गीकरण बहुत तरीकों से किया गया है। परीक्षणों को हम विभिन्न निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला, विभिन्न मानव व्यवहारों का मापन, जैसे बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, रुचि परीक्षण, शाब्दिक परीक्षण, संगीत परीक्षण इत्यादि। दूसरा, उपलब्धि और अभिरुचि परीक्षण। तीसरा, पेपर पेंसिल टेस्ट और निष्पादन परीक्षण। चौथा, गति और शक्ति परीक्षण। पांचवा, व्यक्तित्व और समूह परीक्षण। छठवां, शाब्दिक और अशाब्दिक परीक्षण।